अरपा रेडियो डॉट कॉम की प्रस्तुति भारतीय इतिहास
वाचक स्वर तूलिका। भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम।
पिछले पाठ में हमने जाना कि ब्रिटिश शासन की नीतियों का भारतीय जनजीवन के कृषि, वन, शिक्षा, दस्तकारी, शिल्प आदि क्षेत्रों पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ा, जिसके कारण सन 1765 से 1856 के बीच भारत के विभिन्न भागों में बहुत से विद्रोह हुए। इनमें से सन्यासी, बहावी, पोलिगर, संथाल, मोपला के विद्रोह प्रमुख हैं। ये विद्रोह असंगठित एवं सीमित क्षेत्रों में थे, इसलिए अंग्रेजों की शक्तिशाली सेना द्वारा इन्हें आसानी से कुचल दिया गया। 1857 में जो विद्रोह हुआ वह नियोजित एवं व्यापक रूप में व्यापक क्षेत्र में फैला हुआ था। इसमें ज्यादातर भारतीय समाज के किसान, कारीगर, जमींदार एवं पुराने रजवाड़ों के नवाब आदि वर्ग के लोग शामिल हुए, जो ब्रिटिश शासन की नीतियों से असंतुष्ट थे। 1857 के विद्रोह के पूर्व अंग्रेजों की नीतियों से पुराने शासक एवं जनता त्रस्त थी। अंग्रेजों ने भारतीय राजाओं से सहायक संध्या की थी, पर जनता उसका पालन अपनी मर्जी के अनुसार ही किया करती थी। राजाओं में डलहौजी की विलय नीति के प्रति बड़ा असंतोष था। इनमें झांसी, पूना तथा अवध मुख्य राज्य थे। इनके असंतोष के प्रमुख कारण इस प्रकार थे। पहला, झांसी के मृत राजा के दत्तक पुत्र को डलहौजी ने उत्तराधिकारी नहीं माना और 1853 में झांसी राज्य पर अंग्रेजों ने कब्जा कर लिया। दूसरा, 1851 में पेशवा बाजीराव की मृत्यु हो गई। इसके बाद उसके दत्तक पुत्र नानाजी साहब पेशवा को मिलने वाले पेंशन को अंग्रेजों ने बंद कर दिया। तीसरा, अवध के नवाब वाजिद अली शाह पर कुशासन का आरोप लगाकर उसके राज्य को छीन लिया गया। चौथा, अंग्रेजों की नई लगान व्यवस्था से जमींदारों, भूमि स्वामियों की शक्ति समाप्त हो गई। अंग्रेजों की इन नीतियों से शासन, सैनिक, जमींदार, भूमि स्वामी, कारीगर आदि सभी वर्ग के लोग प्रभावित हुए, जिससे उनमें असंतोष की भावना बलवती होती गई। किसानों और दस्तकारों की बदतर हालत। पिछले पाठ में हमने जाना कि अंग्रेजों की विभिन्न भू राजस्व नीतियों के परिणाम स्वरूप किसानों की हालत पहले से खराब हो गई थी। उन्हें साहूकारों से कर्ज लेना पड़ता था। साहूकार बड़ी कठोरता से कर्ज वसूलते थे। किसानों को उसके लिए अपनी जमीन जायदाद को भी बेचना पड़ा। इससे किसान बेरोजगार हो गए। इस प्रकार आम लोगों में कंपनी शासन के प्रति असंतोष की भावना पनपने लगी। इसके अतिरिक्त कंपनी के पक्षपात पूर्ण चुंगी कर नीति के कारण भारतीय दस्तकार एवं शिल्पी भी बेरोजगार हो गए थे। इससे उनमें भी असंतोष की भावना पनपने लगी थी। भारतीयों की नागरिक एवं सैनिक सेवाओं में उपेक्षा। अंग्रेजों की नीतियों के कारण भारतीयों की कृषि, उद्योग एवं व्यापार की अवनति हुई। साथ ही अंग्रेजों ने भारतीयों को अपने ही देश की ऊंची महत्वपूर्ण पदों पर नौकरियों से वंचित रखा। भारतीयों को न्यायिक, सैनिक एवं नागरिक सेवाओं में केवल छोटे पदों पर ही रखा जाता था। भारतीय रजवाड़े नष्ट हो गए थे और इससे उन पर आश्रित सैनिक, कर्मचारी, दस्तकार आदि सभी बेरोजगार हो गए थे। सामाजिक एवं धार्मिक सुधारों का विरोध। कंपनी शासकों ने भारतीय समाज में प्रचलित सती प्रथा और बालिका वधु के विरोध में तथा विधवा विवाह के पक्ष में नए कानून बनाए। इन सामाजिक बुराइयों को दूर करने का विचार भारतीय शिक्षित वर्ग ने दिया था, लेकिन इन कानूनों का समाज के रूढ़िवादी वर्ग ने भारी विरोध किया। ईसाई धर्म के प्रचार प्रसार से रूढ़िवादी चिंतित थे, उन्होंने इसका विरोध किया। इन सब के परिणाम स्वरूप भारतीय जनमानस में अंग्रेजी शासन के प्रति शंका एवं अविश्वास की भावना बढ़ती गई। भारतीय सैनिकों में असंतोष। अंग्रेजी सेना के अधिकांश सैनिक भारतीय किसान परिवारों से आए हुए थे। उनमें बंगाल के सैनिक अपनी वफादारी के लिए प्रसिद्ध थे। अंग्रेज सैनिक अधिकारी भारतीय सैनिकों को हेय दृष्टि से देखते थे। भारत की ब्रिटिश सेना में भारतीय सिपाहियों का अनुपात 1:5 से अधिक था। सेना में उन्हें अधिक ऊंचा पद नहीं दिया जाता था। गोरे सैनिकों की तुलना में उनका वेतन कम था। भारतीय सैनिकों पर तिलक लगाना, दाढ़ी रखना, पगड़ी बांधना जैसे पारंपरिक कार्यों पर प्रतिबंध था। उन्हें युद्ध के लिए समुद्र पार पर अन्यत्र भेज दिया जाता था, जबकि समुद्र पार करना उन दिनों धर्म के विरुद्ध माना जाता था। इससे भारतीय सेना में असंतोष आने लगा। 1856 में भारतीय सैनिकों को एनफील्ड राइफल एवं नए कारतूस प्रयोग के लिए दिए गए। इन कारतूसों को खोलने के लिए दांतों से काटना पड़ता था। सैनिकों को आशंका थी कि नए कारतूस में गाय या सुअर की चर्बी मिली हुई थी, जिसके कारण उनकी धार्मिक भावनाओं को ठेस लगती थी। असंतोष का दावानल। 29 मार्च 1857 की बात है, जब कलकत्ता के निकट बैरकपुर की फौजी छावनी में सेना की परेड चल रही थी। इसी समय सेना के एक सिपाही मंगल पांडे ने नए बंदूक जिसकी कारतूस में चर्बी लगी हुई थी के प्रयोग से इनकार कर दिया। अंग्रेज अधिकारी ह्यूसन ने उसे इन बंदूकों एवं कारतूसों के प्रयोग करने का आदेश दिया, किंतु मंगल पांडे ने आदेश नहीं माना तो उसे गिरफ्तार करने का आदेश दे दिया गया। तब क्रोध में आकर मंगल पांडे ने ह्यूसन पर गोली चलाई। उसने पास खड़े अन्य अंग्रेज अधिकारियों पर भी गोली चला दी। देश के अन्य सैनिक छावनियों में विद्रोह जंगल की आग की तरह फैल गया। फलस्वरूप 10 मई 1857 को मेरठ छावनी की पूरी भारतीय पलटन ने विद्रोह कर दिया। उसने जेल में बंद अपने साथियों को छुड़ाकर दिल्ली की ओर प्रस्थान किया। रास्ते में हजारों लोग इन विद्रोहियों के साथ हो गए। खबर पाकर दिल्ली छावनी के भारतीय सिपाही भी इन सैनिकों के साथ आकर मिल गए। मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर से नेतृत्व संभालने का आग्रह किया गया। विद्रोह के मुख्य केंद्र। शीघ्र ही विद्रोह की आग उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, दिल्ली आदि स्थानों तक फैल गई। सैनिकों द्वारा प्रारंभ किए गए इस विद्रोह में स्थानीय किसान, कारीगर, जमींदार, राजा, आम जनता भी शामिल हो गए। विद्रोह का नेतृत्व। शीघ्र ही विद्रोही सेना ने दिल्ली पर अपना अधिकार जमा लिया। दिल्ली में विद्रोह का नेतृत्व सम्राट बहादुर शाह जफर के हाथों में था, किंतु इसका संचालन सेनापति बख्त खान ने किया। लखनऊ में अवध की बेगम, हजरत महल, कानपुर में नाना साहेब तथा तात्या टोपे, झांसी में रानी लक्ष्मीबाई, बिहार में कुंवर सिंह तथा रुहेलखंड में अहमदुल्ला ने विद्रोह का नेतृत्व किया। छत्तीसगढ़ में हनुमान सिंह एवं वीर नारायण सिंह ने अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह किया। यह विद्रोह काफी व्यापक थे। इस विद्रोह में आम लोगों ने भी बड़ी संख्या में भाग लिया। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने बड़ी वीरता से अंग्रेजों का सामना किया और वीरगति प्राप्त की। इस प्रकार उन्होंने आम जनता को अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह करने की प्रेरणा दी। छत्तीसगढ़ में विप्लव। रायपुर जिले के बलौदा बाजार के पास सोना खान नामक स्थान है। वीर नारायण सिंह वहां के जमींदार थे। वे अपने जनहित कार्यों के फलस्वरूप लोकप्रिय थे। सन 1856 में सोना खान में भयंकर अकाल पड़ा। लोग अन्न के अभाव में भूखे मरने लगे। लोगों की जीवन रक्षा के लिए वीर नारायण सिंह ने एक व्यापारी के गोदाम में इकट्ठा कर रखे गए अनाज को जनता में बंटवा दिया। व्यापारी ने इसकी शिकायत अंग्रेज अधिकारियों से की, जिसके कारण वीर नारायण सिंह को गिरफ्तार कर रायपुर की जेल में बंद कर दिया गया। सन 1857 ईस्वी को वे रायपुर की जेल से भाग निकले। उन्होंने लगभग 500 किसानों की सेना संगठित कर ली। 1 दिसंबर 1857 को अंग्रेजों की सेना के साथ वीर नारायण सिंह का मुकाबला हुआ। अंग्रेजों ने सोना खान के पड़ोसी देवरी के जमींदार से मदद मांग ली। उसकी सहायता पाकर अंग्रेजों ने वीर नारायण सिंह को गिरफ्तार कर लिया। बाद में रायपुर लाकर दिखावे का मुकदमा चलाया और 10 दिसंबर 1857 को उनको फांसी दे दी गई। इस प्रकार देश की स्वाधीनता आंदोलन में यह महान सपूत शहीद हो गया। शहीद नारायण सिंह का त्याग और बलिदान व्यर्थ नहीं गया। रायपुर फौजी छावनी में मैगजीन लश्कर हनुमान सिंह राजपूत थे। 18 जनवरी 1858 को उसने सिडवेल नामक अंग्रेज सैनिक अधिकारी की हत्या की और फरार हो गए। इस तरह उन्होंने रायपुर में स्वतंत्रता संघर्ष को जारी रखा। अंग्रेजों ने हनुमान सिंह के 17 साथियों को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार लोगों पर 2 दिन मुकदमा चला। उन्हें सेना से बगावत करने एवं राजद्रोह करने के आरोप में 22 जनवरी 1858 को सैनिकों को जनता के समक्ष सार्वजनिक रूप से फांसी पर लटका दिया गया। वे शहीद थे सर्वश्री गांजी खां, शिव नारायण गुलीन, अब्दुल हमाद, पन्नालाल मातादीन, बलिहू ठाकुर सिंह, अकबर हुसैन, लाल सिंह, परमानंद बदलू, दुर्गा प्रसाद, शोभा राम, नूर मोहम्मद, देवदीन एवं शिव गोविंद। इस विद्रोह में सभी जाति और धर्म के लोग शामिल थे। इससे प्रमाणित होता है कि इस अंचल में राष्ट्रीय हित की भावना सर्वोपरि थी। आंदोलन की असफलता। सन 1857 ईस्वी का विद्रोह भारत के व्यापक भूभाग में हुआ, किंतु अंग्रेजों की सत्ता का अंत करने में सफल नहीं हो सका। इसके कई कारण थे। विद्रोहियों के बीच केंद्रीय नेतृत्व का अभाव था। विद्रोहियों के पास पर्याप्त मात्रा में हथियार भी नहीं थे। इस समय के शिक्षित वर्ग एवं अधिकांश रजवाड़े विद्रोह में शामिल नहीं हुए। यह विद्रोह भारतीयों के लिए प्रेरणादायक सिद्ध हुआ। इससे भारतीय जनता में राष्ट्रीयता एवं चेतना का संचार हुआ। साथ ही अंग्रेजी शासन को गहरा धक्का भी पहुंचा। इस विद्रोह से यह स्पष्ट हो गया कि भारतीयों के मन में ब्रिटिश सत्ता के प्रति व्यापक असंतोष की भावना है। लोगों के मन में यह भाव पैदा हो गया था कि उनका देश कंपनी शासन के हाथों में सुरक्षित नहीं है। निसंदेह ये भारतीयों का एक देशभक्तिपूर्ण परंतु असंगठित विद्रोह था, जिसका भय अंग्रेजों को सदैव सताता रहा। इसके फलस्वरूप भारतीय राजनीति में राष्ट्रवाद का विकास हुआ। 1858 का भारत सरकार अधिनियम। भारत की नाराज प्रजा को शांत करने के उद्देश्य से इंग्लैंड की महारानी विक्टोरिया ने 1 नवंबर 1858 को एक घोषणा पत्र जारी किया, जिसमें कंपनी का शासन समाप्त कर भारत का शासन सीधे इंग्लैंड के सांसद द्वारा संचालित करने की घोषणा की गई। भारतीय जनता के धार्मिक एवं सामाजिक पहलुओं के प्रति अहस्तक्षेप की नीति अपनाई गई। प्राचीन परंपराओं का संरक्षण एवं सम्मान का आश्वासन दिया गया। सैद्धांतिक रूप से रानी विक्टोरिया का यह घोषणा पत्र बहुत महत्वपूर्ण था। अब गवर्नर जनरल वायसराय कहा जाने लगा, जो ब्रिटिश सम्राट के प्रतिनिधि के रूप में भारत का प्रमुख प्रशासक होता था।
अरबा रेडियो.com की प्रस्तुति भारतीय इतिहास।